इसमें दो बात है। एक बात तो यह पूछी गई कि भगवान जो आयुध धारण करते हैं इस विषय के मां कहां चाहिए, इसका क्या रहस्य है, क्या तत्व है। तो वास्तु के बीच में तो भगवान ही है, भगवान के आयुधों के विषय में अरे क्यों धारण करते हैं, इसका क्या रहस्य है, क्या तत्व है। एक अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान बताया जा सकता है, वो ठीक भी हो सके और नहीं हो सके। भगवान जो है उनका प्रकट होना, अवतार लेना का तीन हेतु गीता में बताए गए कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतानां पर धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि मैं जो प्रकट होता हूँ क्यों, कि साधुओं के उद्धार के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में मैं प्रकट होता हूँ, अवतार लेता हूँ। ये भगवान के जो आयुध हैं ये दुष्टों के संहार करने के लिए हैं। एक तो बाहर के दुष्ट होते हैं और एक भीतर के। बाहर के तो राक्ष आदि जो है, दैत आदि जो है, उनको मारने के लिए भगवान हर वक्त जो है हथियार धारण किए अपने तत्पर रहते हैं। तो कोई भी बाहर का शत्रु हमारे भजन ध्यान में विघ्न नहीं डाल सकता, क्योंकि हमारे प्रभु सब प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं और यह रक्षा की भी है। जब जब ऐसी बात आई है तो भगवान ने रक्षा की भी है। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या पैदा की तो भगवान का चक्र जो है स्वयं उनकी रक्षा करते थे। तो जब वो कृत्या मारने के लिए आई प्रह्लाद को, प्रहलाद को नहीं अम्बरीश को, प्रहलाद की भी बात है इसलिए प्रहलाद का नाम आ गया। अम्बरीश को वो मारने के लिए दौड़ी तो सुदर्शन चक्र एक सरल चल करके उसको खत्म कर दिया, करता वो मार डाला। और ये चेतावनी दी हम अपने दुर्वासा को कि तुम अब सावधान हो। तो दुर्वासा बेचारा चारों तरफ भागता हुआ कहीं छोड़ नहीं मिली, अंकिल ने भगवान के पास किया तो भगवान ने कहा कि मैं भक्त पराधीन हूँ, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ, उसी की तू शरण जा और कोई दूसरा तुम्हारे लिए उपाय नहीं। और वहां आया दुर्वासा हाथ जोड़े आए, किंतु अम्बरीश उसके पैरों में हाथ जोड़े तैयार है। दुर्वासा त्राई मान रक्षा करो रक्षा करो। तो अम्बरीश एक प्रकार से उस सुदर्शन से प्रार्थना करते हैं इस ब्रह्म की आप रक्षा करते। तो यह भक्तों का भाव। और भगवान के चक्र की बात आपके सुनने आई होगी, प्रहलाद का नाम इसलिए आ गया इसी प्रकार से कि प्रहलाद भगवान की भक्ति क्यों डटा रहा। इन्होंने कृष्ण ने बहुत कुछ समझा, किन्तु प्रहलाद कहा कि मेरे बस की बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति को छोड़ नहीं सकता। तो संगमर को कह दिया कि इसको तुम मार डालो। तो संगमर ने कृत्या पैदा की और कृत्या को प्रहलाद को छोड़ दी। तो उसी वक्त जो सो भगवान का चक्कर चला, कृत्या का भी नाश कर डाला और संगमर को भी मार डाला। फिर उसने देखा कि मेरे निमित्त से गुरु पुत्र मारे गए। तो प्रहलाद ने ये कहा कि यदि गुरु पुत्र में मेरा द्वेष में था न है तो उसके प्रभाव से ये जीवित हो जाऊ। तो जीवित हो तो भक्त का भाव तो ऐसा होना चाहिए जैसा प्रहलाद का था और जैसा अम्बरीश का था। और भगवान के चक्र का यही कर्तव्य है। उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। तो भगवान का जो चक्र है इसी प्रकार से गदा है, तो ये दुष्टों का संहार करने के लिए है। और कोई भी एक प्रकार से थी उनके ऊपर अत्याचार करे तो उसको शिक्षा देने के लिए। ऐसे ही हमारे हृदय के मां जो कामक्रोध लोग हैं वे आक्रमण करे तो उनको मारने के लिए भी वह शस्त्र तैयार है, भीतर से भीतर उनको विनाश कर दे। भगवान का जो शंख है इसकी कथा ये आती है कि ध्रुव को जब छुआ दिया तो छुआने के साथ ही सारे शास्त्रों का ज्ञान ध्रुव को हो गया। ध्रुव ने कहा प्रभु आप वर मांगने के लिए कहते हो तो मैं यही वर मांगता हूं कि मुझको वेद और शास्त्रों का ज्ञान बिना ही पढ़े हो जाए। तो 5 वर्ष का ध्रुव था उसके गाल के संग छुआ दिया, सारे शास्त्रों का ज्ञान बिना पढ़े ध्रुव को हो गया 5 वर्ष के बालक को। और दूसरे काम में भी शंख आता है कि जिस समय के बीच के मां शत्रुओं के हृदय को कंपित कर देते हैं शंख बजा करके कि महाभारत में ये बात जगह जगह आती है। जब कैरू पांडवों की लड़ाई होती थी उस समय के बीच के वहां अर्जुन के रथ पर बैठे हुए भगवान 5 जन शंख को बजाते थे और अर्जुन देवदत्त शंख को, तो इससे दत्तराज पक्ष के जो योद्धा है उनके हृदय विदीर्ण हो जाते थे। भगवान की ये प्रतिज्ञा थी कि मैं अस्त्र लेकर के युद्ध नहीं करूंगा, किंतु ये बात तो नहीं थी कि शंख नहीं बजाऊंगा। तो भगवान तो अपना शंख से सारा काम कर लेते थे। इसी प्रकार से हनुमान जी जो है वह ध्वजा के वहां बैठे हुए गर्जना करते थे तो समझो कि दुष्ट एकदम घबरा जाते थे प्रतिपक्षी। कहीं कहीं तो ऐसी बात आती है कि हनुमान जी की गर्जना को सुनकर के और हाथी और घोड़े मऊपे का त्याग करने लग जाते। तो अर्जुन और भीम बाणों से और गदा से जो काम लेते थे हनुमान जी गर्जना से और भगवान सिंह को जाकर वो काम ले जाते थे। भगवान का जो चौथा जो कमर है इसे को दिखला करके भगवान ये आदेश देते हैं कि सृष्टि की आदि के मां मेरी नाभि से एक कमर पैदा हो और उस कमर से थी ब्रह्मा जी को ले और ब्रह्मा से थी यह सारी संसार उत्पन्न हुई। सारे संसार की उत्पत्ति करने वाला ये मेरा कमल है, ये भगवान दिग्दर्शन कराते। क्या आयु है तो ये चारों आयुधों की बात आपको बतलाई, मैं अपने भाव के अनुसार बतला हुए कहां तक ठीक है कहां तक बेच गए ये तो भगवान नहीं जाने। भगवान का जो तत्व और रहस है और भगवान के आयुधों का जो तत्व और रहस है उसको भगवान नहीं जानते। हमारे तो बुद्धिमान तो पूछ ही नहीं सकती, ये तो हमारे मन का भाव है, हमारा अनुमान है, एक हमारे मन की धारणा है, उसका आपके सेवा में कह दिया। दूसरी बात उनकी यह है कि भगवान के गले में जो माला है और वस्त्र है, वस्त्र आभूषण ये किस लिए है? ये भक्तों के अंग बढ़ाने के लिए। भक्त लोग जो है खुश हो जाते हैं इसका एक रहस्य मैं आपको बतलाता हूं। भगवान की प्राप्ति का बड़ा सुगम उपाय है, भगवान का जो स्वरूप है उसमें हमारा मन लगे तो भगवान हमको मिलते हैं। तो हमारे मन को जो चीज अच्छी लगे वही हमारे प्रभु के ऊपर सजाने चाहिए, तो मन जो है फिर प्रभु को छोड़ करके नहीं जाए। हमारे मन की आसक्ति माला वगैरह में और आभूषणों में और वस्त्रों में, सुंदर सुंदर वस्त्रों में और सुंदर सुंदर आभूषणों में स्वाभाविक है। तो भगवान को ऐसा सजाना चाहिए जो हमारे मन को प्रिय रहे, और भगवान को हम देखते रहें, ध्यान करते रहें और भगवान हमारा ध्यान करे, तो हमको कैसा बनना चाहिए कि भगवान को जो चीज प्रिय लगे ऐसा तो अपने को सजाना चाहिए, और हमारे मन को जो प्रिय लगे ऐसा भगवान को सजाना चाहिए। हमारा मन 36 प्रकार के या 56 प्रकार के भोगों की तरफ जाता है, तो भगवान की हम पूजा करें, और पूजा का एक अंग है भगवान के भोग लगाना, तो उस भोग सामग्री के बीच के मां जो बढ़िया से बढ़िया चीज हम समझे वो उस भोग सामग्री में जाकर के रखें, तो अपना मन कहीं भोग सामग्री में जाए तो भगवान के भोग में जाए, यानी भगवान के लिए जो अर्पण किया गया है उसमें जाओ, वो भगवान के लिए भोग जो हमारे लिए प्रसाद है, तो भगवान के समर्पण करके उस प्रसाद को हम पाए तो उससे हमारी बुद्धि शुद्ध हो। इसी प्रकार से थी हमारे को हीरा पन्ना माणिक और रत्न बढ़िया लगे और उसका हमारे दिल में आग्रह है कि ये दामी चीज है, तो बढ़िया से बढ़िया लाखों करोड़ों रुपयों का जो रत्न है वो भगवान के आभूषणों में, मुकुट में, कुंडल में, समझो कि इनके ना आपने लगाए, इनसे एक दूसरे मुकुट और ये कुंडल जड़े हुए हैं, रत्नों से जड़े हुए मुकुट और कुंडल, जितना अनुमान किया जा सके एक एक हीरा लाख लाख का, करोड़ करोड़ का, जब एक प्रकार से मन का धन तो शेर कमी क्यों, तो इस प्रकार से आपने भगवान को सजा में और वस्तु भी भगवान के दामी से दामी, माला भी दामी से दामी, माला भी एक प्रकार से थी खुशबू की जिसके वहां बड़ी भारी सुगंधी आती है। एक कहावत है कि सोना सुगंधी, तो आपने सोने के पुष्प और सुगंधी वाले, जैसे कुएर के बगीचे में सुगंध की माफक पुष्प होते हैं, उसमें सुगंधी भी बहुत बड़ी आती है। एक समय के बीच के मैं कुएर के बगीचे से उड़ करके और गंधमादन पर्वत के ऊपर पुष्प आ गए थे, द्रौपदी उनको मिले तो द्रौपदी भीमसेन कहने लगी कि ऐसे पुष्प जाओ वहां से जाओ, तो भीमसेन उसका पता लगा करके कुएर के बगीचे में पहुंचे, वहां से बहुत से पुष्प तोड़ करके द्रौपदी के लिए ले आए। तो अपने तो मन से ही मनाने हैं सभी पुष्प, वहां से ही मनाए, बल्कि ये भाव रखें कि कुएर अपने बगीचे से पुष्प लेकर के आया, माला लेकर के आया है, तो कुएर को भी संवर करें तो उसका भी विचार का कल्याण हुए, देवताओं को भी संवर कर ले कि देवता लोग ये सब सामग्री बढ़िया बढ़िया पलों से ही जाकर के रखिए, और उस पुष्पों के बीच के में जो सुगंध है वो अलौकिक है, ऐसी हम भावना करें तो समय पाकर के हमको सुगंध आने लगे। तो भगवान के वहां जो गंध आती है और भगवान की माला में जो गंध आती है, उस गंध से थी हृदय का इतना सात्विक भाव हो जाता है, वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए अधिकारी बन जाता है।
और भगवान के लगा हुआ जो भोग है वो प्रसाद है, माला भी प्रसाद है। भगवान के गले में माला पढ़ा करके भगवान वो माला मानो हमको वापस देते हैं, हमारे गले में पढ़ाते हैं, तो अपना अहोभाग्य समझना चाहिए और खूब आनंद के में मुग्ध होना चाहिए। तो माला भी भगवान का प्रसाद और भोजन भी भगवान का प्रसाद, उसको पाकर के एकदम खूब तृप्त होना चाहिए। इसी प्रकार से थी जितनी सामग्री है, ऋतु फल है, समझो कि उगी फल और तामूल है, ये सब जो भगवान के चढ़ाए गए हैं वे फिर हमारे लिए सब प्रसाद हो, तो उससे अपनी बुद्धि शुद्ध होती है। तो भगवान को सजाना चाहिए जो अपने मन को जो चीज प्यारी लगे, और अपने चित्त के वहां बहिराग है तो एक प्रकार से, और वो प्यारा लगे तो या तो शिव जी का ध्यान करना चाहिए, जो विभूति लगा करके ध्यान अवस्था के में शिव जी मस्त है और शरीर के राख लगा रखी है और सिंह की बागंबर ही ओढ़ रखी है, या भगवान श्री राम का वो रूप जो भगवान वन में गए थे 14 वर्ष तक श्री राम वन में रहे, वो वनवासी का वेश, विरक्त का वेश वन में जाने के समय में ये कही दें, मुनियों के पहनने के योग वस्त्र लाकर के दिए श्री राम और लक्ष्मण को पहनने के लिए, और श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता से वे वस्त्र पहने, बलकल के वस्त्र पहने और मृग चंद ओढ़ लिया, और इसी प्रकार से बलकल के वस्त्र सीता को लाकर के भी के गए में दिए। तो सीता भगवान राम से बोली कि मुझे किस किस प्रकार से ऐसे वस्त्रों को पहनती है, मुझको इसका ज्ञान, इसलिए प्रभु आप बतलाओ। तो भगवान लज्जा का त्याग करके सभा के बीच के मां उन वस्त्रों को हाथ में लेकर के और सीता को पहनने के लिए तैयार है। ये देख कर के सब प्रजा और सभासद रोने लगे और वशिष्ठ जी बर्दाश्त नहीं कर सके। वशिष्ठ जी ने कहा, अरे दुष्टा कह गई, क्या दशरथ से तुमने ये वरदान भी मांगा है कि जनक नंदिनी सीता जी बलकर पहन करके बन में जाओ, यदि ऐसी बात नहीं है तो तेरा क्या अधिकार है इस प्रकार सीता को जाकर वस्त्र देना। सीता तो बने अपने पति की सेवा के लिए जा रही है, अपने पति को धर्म की दृष्टि से अपनी इच्छा से जा रही है, इसके लिए तुम्हें कोई वरदान नहीं मांगा है, तेरे को लज्जा नहीं आती। दूसरा एक प्रकार से जाकर ये वस्त्र दे रही है सभा के लिए, नहीं सीता इन्हीं वस्त्रों को जो वस्त्र पहन रखे इसी को पहन करके बल में जाए। ठीक है, लज्जित हो गई और सीता जो है राज वस्त्रों को पहन करके, राज पोशाक को पहन करके भगवान के साथ में बल में गई। तो हमारे को यदि ये चीज प्यारी है, वैराग प्यारा है, तो भगवान के ऊपर समझो वही ऐसो वस्त्र पहनने चाहिए और भगवान को उसी प्रकार का सजाना चाहिए जिससे हमारे चित्त के बीच के मां बहिराग हो, जिससे हमारे चित्त के मां समझो कि संसार से थी उपरती हो, या भगवान का जो स्वरूप हमारे को प्यारा लगे ऐसा ही भगवान को सजाना चाहिए। तो भगवान विष्णु का जो स्वरूप है वो तो लक्ष्मी के पति थे ना, लक्ष्मी के पति ठहरे तो जिनके हृदय के ऊपर लक्ष्मी का प्रभाव है, जो इसका आदर करते हैं, धन का जो आदर करते हैं, ऐश्वर्य का जो आदर करते हैं, उन पुरुषों को उचित है कि एक प्रकार से भगवान को आभूषणों से सजाएं, वस्त्रों से सजाएं, बढ़िया बढ़िया चीज भगवान के गले में पहनाए, रत्नों की माला और चंद्रहार कोष में मणि और मोतियों की माला सोने की माला ये सब भगवान के गले में सजाए थे। अर्जुन के चित्त में वैराग है, अर्जुन को वैराग ही प्यारा लगता है तो भगवान को वृत्त पुष्प सजा करके और उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वीतराग विषम हुआ कि तुम मन के स्थिर करने के वास्ते, मन को बसना करने के लिए, मन को एक देश में बांधने के लिए परमात्मा विषय जो धारणा जो है एक देश में चित्त के बांधने को नहीं उसे धारणा है। तो भगवान का शुभ व्यक्त होना चाहिए। इस सूत्र का यह अर्थ है वीतराग विषम व चित्तम, चित्तम चित्त का विशेषण है वीतराग विषम। वीतराग पुरुष ही है जिसके चित्त का विषय, वीतराग पुरुष ही जिसके चित्त का विषय है, ये इस सूत्र का अर्थ। तो व्यक्ति जो पुरुष है उनको अपने चित्त का विषय बनाना यानी वैरागवान पुरुषों का ध्यान करना। तो वैरागवान संसार में बहुत है, जैसे सुखदेव जी शंकर के ईश्वर देव जी जड़ भरत बड़े वृत्त और संसार से उपरम, किंतु योगियों के योगी और विरक्तों के विरक्त शंकर भगवान और श्री रामचंद्र जी, यदि आप विष्णु के उपासक हो तो राम का ध्यान करने के श्री विष्णु ही राम के रूप में देवता जी में प्रकट हुए। देवताओं के आराधना करने के ऊपर भगवान ने कहा कि मैं दशरथ के यहां चार रूप से अवतार लूंगा, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में भगवान प्रकट हुए। प्रधान साक्षात भगवान राम ही थे और वे उनके अंश थे, तो इसलिए भगवान विष्णु में राम है, राम कोई उनसे अलग नहीं। किंतु जिस समय के यहां भगवान राम 14 वर्ष बन रहे उस समय के यहां संजो की बेत होकर के बीते जय जन्मी सीता सेवा के लिए साथ में रही, किंतु भगवान ब्रह्मचर्य का पालन करके ही उस समय में बिछड़े। लक्ष्मण भी इसी प्रकार, लक्ष्मण और राम ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, इतनी बात नहीं समझो कि भरत और शत्रुघ्न राज का शासन करते हुए वे भी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, क्योंकि वे समझते थे श्री राम और लक्ष्मण बनना लेकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उसी प्रकार हमको रहना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में बतला है भक्त और शत्रुघ्न जितने मंत्री थे उन्होंने भी उसी प्रकार बढ़कर बस्तर पहन करके अपना जीवन 114 वर्ष का जीवन बिताया। जब हनुमान जी पहुंचे हैं खबर लेकर के उस समय के बीच के वहां वाल्मीकि रामायण की मां ये बात दिखाई, पद्म पुराण के मां ये बात आती कि हनुमान जाकर क्या देखते हैं कि महाराज श्री भरत जी महाराज पादुकाओं की सेवा कर रहे हैं और पादुकाओं को पुस्तक सुना रहे हैं और साथ के बीच के में सब मंत्री जन भी शत्रुघ्न भी उन्होंने जाकर खबर दी कि भगवान राम विमान में बैठ करके आ तुलसी तुलसी के रामायण में यह बात नहीं, क्या देखते हम किस प्रकार से वो जीवन बिता रहे हैं। भारत स्वतंत्र मंत्रियों के सही उनका जीवन बिताना कैसा है कि बलकल वस्त्र पहनते हैं, उन्हें भी जो कंदमूल फल खाते हैं वो उनका भोजन है, और भूमि पर स्नान करते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। अपने अपने धर्मपतियों के साथ के मां न्याय युक्त में एक प्रकार सहवास नहीं करते, बढ़ते बढ़ते रहते। क्यों? कि भगवान राम और लक्ष्मण बढ़ते ही बढ़ते वन के वहां 14 वर्ष के लिए निवास करते हैं, तो हम लोग किसी लोगों को कैसे भोगे। अंग्रेजी ने जमीन में स्वर्ग करते हैं तो हम समझो कि ऊपर कैसे लेते हैं, बल्कि जमीन में एक खड्डा खोल करके उसमें हमको सहन करना चाहिए। ये भाव है। तो बात यह है, भगवान राम का जो व्यस्त जो रूप है, ऐसे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। यदि शिव का उपासक है तो उस भगवान सदाशिव का ध्यान करना चाहिए, जो भगवान ध्यानावस्था में बैठे। तो हमको उनकी नकल करनी है। भगवान शिव जी अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, अब हमारा इष्ट शिव है तो हम इसी प्रकार से शिव का ध्यान करें, तो फिर मन एकदम रुक जाता है। तो मन को रुकने के लिए अपने मन के अनुकूल भगवान के स्वरूप को सजा करके उसका ध्यान करना चाहिए। इसलिए भगवान के जो वस्त्र आभूषण और मालाएं हैं, अब रही अपनी बात, ये प्रश्न से अलग बात कहता हूं, अपने को कैसा बनना चाहिए कि जिससे भगवान हमारे ऊपर आ सके।